राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 1993 दोपहर लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
इसमें लगा है कि हर जीव के अंदर भगवान वास करते हैं तो फिर वह पाप की ओर क्यों प्रवृत्त होता है। तो हर जीव के भीतर भगवान है क्या? पाप के भीतर भगवान नहीं है? पाप के भीतर भगवान नहीं है क्या? नरकम भगवान नहीं है क्या? क्या दुराचार में व्यभिचार में भगवान नहीं है क्या? गो हत्या में भगवान नहीं है? भगवान होते हुए भी भगवान काम नहीं आते। भगवान तो सब जगह है। गंदी से गंदी चीज में भगवान है, शुद्ध से शुद्ध चीज में भगवान है, पापी से पापी के भीतर भगवान है, पुण्यात्मा महात्मा संत भगवत प्रेमी तत्व जीव में भगवान है। ईंट में पत्थर में सोने में सब में शुद्ध में अशुद्ध में महान दुर्गंध आ रही है, मरा हुआ पशु पड़ा है, उस गुंध में भगवान है, उसमें उसमें भगवान है। पाप क्रिया होती है उसमें भगवान है, पुण्य क्रिया उसमें भगवान है, सब व्यापक भगवान है। छोड़कर थोड़ा ही है, सब में व्यापक है। तो फिर पाप कर्म होता ही क्यों है? अभी क्या है? मर जाता है, मुर्दा है। तो गाय की चिकित्सा करने वाले वैद्य के पास में गए कि मेरी गाय बीमार हो गई, बहुत अच्छी गाय है, अच्छा दूध आता है, एक पाव घी रोज ना आता है हमारी गाय के, ऐसी गाय हमारी अच्छी है, वो बीमार हो गई। वैद्य ने देखा, उसको देखा, पूछा सब बात पूछते, उसने कहा कि पाव डेढ़ पाव आप काली मिर्च लाओ, आप काली मिर्च कूट करके दो स्टाक वो दे दो, सुबह दो स्टाक शाम को दे दो, ऐसे पाव डेढ़ पाव दे दो, गाय का घी उसे ऊपर दे दो, पाव भर घी वो दे दो। वो ले आया, काली मिर्च कूट करके दे दी और गाय को दूही नहीं, क्यों? गाय का दूध है, दूध में पाव भर घी आता है, तो दूहेंगे नहीं तो घी तो भीतर है ही मौजूद है ही। गायों की बीमार ज्यादा, एक तो न दूड़ने से गर्मी चढ़ी, न दूड़ने से थर में दूध रहता है उसे गर्मी चढ़ गई, एक काली मिर्च गर्मी चढ़ गई, दूध दिया नहीं गाय और ज्यादा बीमार हो गई। वैद्य से पूछा कि महाराज गाय तो ज्यादा बीमार हो गई, ज्यादा बीमार कैसे हो रहे भाई? ये है कि दवाई गुण करे न करे, देरी से करे थोड़ा करे, पर ज्यादा होने कोई कारण नहीं है, दवाई दे दी, हाँ सा काली मिर्च लाकर दे दी, घी दिया, घी तो गाय में है ही, या क्या दू ही नहीं, हमने दू है तब घी रहेगा, वो घी तो भीतर ही, तो गाय के भीतर वो घी काम करेगा है, तो गाय के भीतर, गाय तो गाय के भीतर ही है दूध दही घी, ऐसा मत करो। हमारी साधारण बुद्धि से काम करो, बुद्धिमती मत लगाओ, ऐसे गाय में है ही, ऐसे ब्रह्म सब में है ही, ब्रह्म काम नहीं आता हो जब तक अलग करके उसका अनुभव न करो तब तक काम नहीं आता। गाय के दूध को बिलो कर अलग करो और वो गाय को घी दो तो काम आएगा, बड़े बड़े घी का काम आएगा, ऐसे ब्रह्म अंदर है वो काम नहीं आएगा। नारायण 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 नारायण, देखो ज्ञान का मार्ग है, उसका नाम ज्ञान का मार्ग है, तो उसमें जानकारी काम करती है, उसमें क्रिया काम नहीं करती। अरे भगवान की उपासना में भजन में नाम जप करो तो काम करेगा, देरी लगेगी, कोरा नाम जपते हो नाम रात और दिन, नाम के पीछे पड़ जाओ और भगति न मिले खाने पीने के लिए भी, ऐसे नाम जप करो तो नाम जप से सिद्धि होगी, समय लगेगा और समय लगने पर भी सिद्धि हो जाएगी, 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष सिद्धि हो जाएगी, परंतु तत्परता से करो तब है। और ऐसे माला फेरते रहो, उम्र भर फेरो, कोई लाभ दिखेगा नहीं, लाभ हुए बिना नहीं रहेगा, जैसे मैं ब्रह्म हूं इससे लाभ नहीं होता है, ऐसा नाम जप करने से लाभ नहीं होगा ये नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए ये तो तत्परता से करने से होगा, संख्या से नहीं होता है। लिखा है शास्त्रों में संख्या से नाम जब संख्या करने से फायदा होता है, परंतु वो लगन भीतर की होती है, नाम ले रहे हैं और आंखों आंखा में आंसू आ रहे हैं, हृदय गदगद हो रहा है और नाम लेते ही भगवान की याद आती है मीठी मीठी, भगवान मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, उनकी चर्चा प्यारी लगती है, उनकी लीला प्यारी लगती है, भगवान के गुण प्यारे लगते हैं, या राम 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 कर रहा है, रस आ रहा है, ऐसा भजन हो तो उसकी सिद्धि हो जाएगी। किसी काम करो उसमें तत्परता से वैसा की वैसी अपनी वृत्ति बढ़े तब लाभ होता है, और लाभ नहीं होता, और नाम जपने से होगा लाभ पर वो दिखेगा नहीं। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन का लाभ है अनुभव है, वो भाग्यवान को होता है, साधारण वो नहीं होता है, भाग्यवान वही है जो तत्परता से जपे। एक संत हुए हैं, उनका नाम बुधाराम जी था, बुधाराम जी संत, एक माँ थी एक वो थे, दोनों ही साधु हो गए, तो वो तो साधु हो गया, माँ रसोई बढ़ा कर दे देती, जो मिलता उसे काम चलाते, तो बुधाराम जी महाराज है वो राम राम में लग गए, खड़ा पैर शिष्य हो गए और राम 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 करने लग गए। माँ रसोई बना करके थी, बुधा आ जा रोटी खा ले भोजन कर ले, तो माँ कहती जो भोजन कर ले, फिर अपने भजन में लग गए। एक दिन बोले कि माँ तू रोटी मत बना, खिचड़ी बना दे, खिचड़ी बना दे, रोटी चबाने में समय लगता है मेरा, नाम जब मैं खोटी होता हूँ इस वास्ते, तो खिचड़ा बना दिया, खिचड़ा बना कर दे तो वह बोले माँ खिचड़ा ठंडा हो जाए तब मेरे कहा कर, अब गर्म गर्म गले में उपासना करूं ठंडा हो जाए, मैं नाम से खोटी होता हूँ, नाम जब में देरी लगती है, इस वास्ते तू ठंडा हो जा पान तब हो। उसके बाद मुझे माँ इनमें भी देरी लगती है, खिचड़ी खाने में भी, ऐसा बता कि बाजरे का दलिया बना दे लपटा पतला पतला, और वो ठंडा हो जाए तब कहे जो पिघट घट के पी लो पर चला जाऊ, नाम में खोटी हो जाता हूँ, मेरे सहा नहीं जाता, अब मैं तो बैठे ही इसी तरफ कमर पुकार करूँ उपासना करूँ, इनको ठंडा हो जाए, ये हो जाए हो जाए, ये होता नहीं माँ, तो माँ विषय बना देती और ठंडा हो जाता ठीक तरह से, तो आते आगे घट कर पी कर राम 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 नाम लग जाते, ऐसी नाम की लगन हो जाए तो सिद्धि हो जाएगी, नाम सबसे सिद्धि हो जाएगी। अब दूसरा काम किशोर स्वभाव है, भोजन भी करने में देरी लगती है, आप लेते हो स्वाद भोजन का, सी लगे जाड़ा लगने पर बढ़िया रजाई सोकर रजाई उड़कर उनमें रस लेते हो, जब तक पदार्थों में रस लेते रहोगे तब तक नाम की सिद्धि नहीं होगी, जड़ पदार्थों के साथ रहते हुए साधन नहीं होता है, सर चीज हो गया कोई परवाह नहीं, और एक चेतन परमात्मा में लग जाओ तो सिद्धि जरूर हो जाए। उसमें भी आजकल सिद्धि जल्दी होती है। कलयुग में सब चीजें महंगी हो गई, परंतु रुपया सस्ता हो गया। रुपया का एक शेर घी आता था, आज एक शेर घी के गाय का घी तो 100 रुपया लग गया, 80-90-100 रुपया। तो रुपया तो गया सस्ता, चीज हो गई महंगी। तो संसार की वस्तु भगवान हो गए, तो भगवान सस्ते हो गए। आजकल आजकल भगवान सस्ते बहुत है, जिसे चीजें हो नहीं महंगी, रुपया सस्ता हुआ। हजार रुपया, 10,000, 1,00,000 रुपया मामूली चीज। आज पहले 1,00,000 रुपया मामूली नहीं था, कितना मूल्य था पहले। आज वो रुपया जो टन टन बोले, उस रुपये का 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया ऐसा सुना है मैंने। आप जान गए क्या भाव है उसका, 1 रुपये का। तो 1 रुपये 100 रुपया आ जाए तो इसमें सस्ता हुआ ना। ऐसे भगवान सस्ते हैं आजकल, बहुत जल्दी मिलते हैं। सच्चा सत्संग और विचार करे तो आदमी वृत्तियों में फर्क पड़ता है एकदम, इतना पहले फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा एक जमाना है आज। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा का जाए, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। सच्चे हृदय प्रार्थना, हे नाथ, तो आपके जल्दी काम करना हो, नाम का जप करते रहो और प्रार्थना मनी मन के, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। आपकी स्मृति दो महाराज, आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, आपकी लीला, आपका गुण, आपका धाम, ये सब मेरे को प्यारा लगे, अच्छा लगे। ऐसी प्रार्थना करते रहो, नाम जप करो, एकांत में ज्यादा समय दो, तत्परता से लग जाओ तो सिद्धि हो जाएगी। थोड़ा समय तो लगेगा पर सिद्धि जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। पर तत्परता से लगने से होगा काम, केवल संख्या से काम नहीं होगा। लिखा है संख्या का, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। 3.5 करोड़ ये मंत्र का जप हो, 3.5 करोड़ साधक त्रिकोटी जपती। कल संतरण उपनिषद में सलिखा है, पर प्रेम हो तो 3.5 करोड़ रुपया नहीं हो जाएगा, और प्रेम नहीं हो तो 3.5 करोड़ नहीं होगा। ऐसी बात है, तो उपासना तल्लीन हो जाए, उसमें तत्पर हो जाए, उसमें गर्क हो जाए, गहरा उतर जाए, फिर हो जाएगी सिद्धि। ये बात है। नारायण 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 नारायण, जब लगन लगती है भजन की, तो संत कहते हैं नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहा, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये पांचों सुहाती नहीं। विषय भोग और निद्रा है वो सुहाती नहीं। आज लोग निद्रा नहीं आओ तो भूल देते हैं, और निद्रा सुहाती नहीं आओ तो बहुत अच्छी बात। तो विषय भोग निद्रा हंसी दिल की ये नहीं सुहाती, और जगत का प्रेम, जगत का आकर्षण, प्रियता रुपये पैसों में, भोगों में, वस्तुओं में जो आकर्षण है, ये सुहाता नहीं। और बहुत बातें नहीं सुहाती, बात करते मन नहीं लगता वहां। सच्चे साधक होते हैं वो साधारण कथा में बैठ नहीं सकते, जहां हंसी दिल की बात होती है, हंसा दिया, लुला दिया, बात बढ़िया बात गई। साधक कौन थे टिक नहीं सकता। साधक तो बढ़िया भगवान की, रहस्य की, प्रेम की अथवा ज्ञान की गहरी बातें हो वहां साधक टिकेगा, नहीं तो साधक का मन नहीं लगता। जगत प्रीत बहु बात में मन नहीं लगता। सच्ची लगन है, लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए, तनमन खो जाता है। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घन श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। खाना पीना विश्राम नींद आराम लेना ये होता नहीं उसे। मन में लागी चटपटी कब देखूं घनश्याम, घनश्याम के दर्शन कब हो, कैसे करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, भगवान के दर्शन कैसे हो, ऐसी लगने पर खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम, सोना ये अच्छा नहीं लगता, ये भूल जाता है, एक लगन में भूल जाता है। ऐसी लगन लगने पर बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है। आप लोग करके देखो, आप सब छोड़ करके और वृंदावन का सेवन करते हो कि ब्रज में रहे वृंदावन का सेवन करें, तो इस तरह से आप करो विशेषता से, और विचार मत करो जगत तुराई छोड़ कर हो ये मूड भजराम। लोग कहते मूड गए बस ठीक है बहुत अच्छा है, नाम जप में लग जाओ सच्चे हृदय से और कहीं भी मन जाए नहीं तो विचार ही हो जाएगा, पांचों बातों में छोड़ कर तो इससे सिद्धि हो जाती है। तत्परता से करो, लगन पूर्वक करो, इसमें भगवान भरे हुए नाम में परमात्मा परिपूर्ण है विशेषता से, तो मिल जाएगा। मनुष्य पाप क्यों करता है, पाप करने का अर्जुन ने पूछा है, अथ केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन विवासनेय बलादिव नियोजित। भगवद गीता तीसरा अध्याय 36वां श्लोक है, ये पढ़ देना आप गीता में, अथ केन प्रयोक्तोयम पापम चरति। अर्जुन ने कहा कि महाराज ये पाप कौन करवाता है, किसने अनिच्छन भी पाप करना चाहते नहीं, क्योंकि पाप का फल होगा दुख दंड होगा, तो दुख कोई चाहता नहीं तो दुख के कारण को कौन चाहेगा, पाप होने से अगर दुख भोगना पड़ता है इस वास्ते अनिच्छन अभी वो दुख को चाहता नहीं, इस वास्ते पाप करना चाहता नहीं, अन्याय करना चाहता नहीं, अनाचार अत्याचार व्यभिचार हिंसा आदि करना चाहता नहीं, न चाहता हुआ भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त क्यों होता है। इसमें यह पूजा भगवान के रहते पाप क्यों करता है, असली प्रश्न है अर्जुन का 36वें श्लोक में। तो केन प्रयुक्त हो, किससे प्रेरित होकर पाप करता है, पाप कराने में कौन लगाता है, पाप करना चाहता नहीं मनुष्य फिर भी पाप में लगाता है, तो मालूम होता है कोई जबरदस्ती पाप करवाता है, करना चाहता नहीं हो। तो भगवान ने उत्तर दिया कि काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा विद्यनम वैरिणम। मन में जो कामना है रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, मान मिल जाए, बड़ाई हो जाए, आराम से रहे, ये जो मन की इच्छा है ना सुख होगी और संग्रह करने की, ये इच्छा भगवान से मिलना नहीं देती, पाप कराएगी जबरदस्ती। रुपयों की इच्छा है तो झूठ कपट बेईमानी उन्हें करनी पड़ेगी, रुपयों का लोभ है, सेल टैक्स चोरी करेगा, इनकम टैक्स चोरी करेगा, चाहे जैसे पाप करेगा, दूसरे को ठगेगा, धोखा देगा, रुपया किस तरह से मिल जाए ये उसकी बात है। तो पाप आचरण करता है भोगों की इच्छा से और संग्रह की इच्छा से, मान चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आदर चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, ये चाहना जड़ चीज की नाशवान की, जब तक चाहना रहेगी तब तक पाप छूटेगा नहीं। वो तो कहते भगवान रहते वो दिखते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं, तो पाप ऐसे पाप के आचरण में कामना है, मेरे बेटा हो जाए, मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मेरा शरीर निरोग हो जाए, लोग मेरा आदर करे, हमारा अपने समाज में नाम हो जाए, मेरे को लोग अच्छा समझे, अच्छा ये कामना जब तक रहेगी तब तक पाप छूटेगा नहीं। 35 के बाद 36 से 42 43 तक आप पढ़ लो गीता के तीसरा अध्याय का अंतिम भाग, खूब विवेचन किया है इसका। तो ये शंका अर्जुन ने करी कि पाप का आचरण क्यों करता है, भैया कामना मन में नाशवान पदार्थों की इच्छा है, अब नाशवान पदार्थों की इच्छा है, ऐसे कोई कहे हमारे भगवान के दर्शनों की इच्छा है, तत्व ज्ञान की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, हमारे कल्याण की इच्छा है, हमारे वैकुंठ की इच्छा है, भगवान के धाम की इच्छा है, तो ये इच्छा बाधा देगी, ये इच्छा बाधा देती, ये इच्छा नहीं कहलाती है, ये कहलाती है पिपाशा, प्रेम की पिपाशा, तत्व ज्ञान की जिज्ञासा। जिनमें पदार्थ की जी इच्छा है वो कामना नहीं है, कामना वो होती है जड़ चीज है, नाशवान चीज है, उसकी इच्छा होती है, वो कामना है। भगवत धाम की कामना हो, भगवत दर्शन की कामना हो, भगवत प्रेम की कामना हो, तो ये संसार को छुड़ा देती है। हम कामना उसी करें जो है, तो है मिलेगा कामना से, पर जो नहीं है वो कामना से कैसे मिलेगा। नाशवान पदार्थ है, भोग है, रुपये है, मकान है, मान है, बड़ाई है, प्रशंसा है, वाह वाह है, ये इच्छा होगी तब तक भजन नहीं होगा। पाप का आचरण अनिच्छा, न चाहता वो भी पाप कर बैठेगा। लोभ है रुपयों का, तुम्हारा झूठ कपट कर लेगा, दिखता है कि झूठ कपट से रुपये आते हैं, रुपये झूठ कपट से आते नहीं है, पर दिखता है ऐसा है कि चोरी करे एकदम भजन रुपये आ जाए, 10,000 15,000 20,000 एक साथ में रुपये आ जाए, तो चोरी करेगा, जेब खतरेगा। अगर उनको ऐसी विद्या आती है चोरों को विलक्षण, आप आश्चर्य करोगे ऐसी बात। इंदौर की बात है, वहां जेल खाने में मेरे को बुलाया था सत्संग करने के लिए। अभी हम गए थे जेल खाने में जोधपुर में भी सत्संग करने के लिए, तो वहां सत्संग कराए तो वहां के अफसर कहने लगे ये जेब कतरने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, बड़ी विचित्र बुद्धि है इनकी। वहां उनके ऊपर रहने वाले एक अफसर ने कहा कि मैं एक दिन खोटा रुपया जो नहीं चला खराब है ऐसा वो रुपया लेकर गया, तो उनको पूछा क्या था तुम्हारे में खोटे रुपये एक दो गए और उसमें है, इतने होशियार होते थे जेब कतरने वाले। इसमें ऐसे पारंगत होते हैं, इस बार से चोरी करना 14 विद्याओं में है, 14 विद्या है, वहां चोरी एक विद्या है, 13 विद्या दूसरी, एक विद्या चोरी करने की है, तो चोरी ऐसे हरेक आदमी नहीं कर सकता, पता ही नहीं लगे वो ले जाए। एक स्टेशन की बात है, भीड़ बहुत थी, मेरे पास दो कमंडलू थे आदमी, दोनों में ही ले लिया, मैं हूँ भीड़ में चले, महाराज मेरे हाथ से कमंडो ले गया, पता ही नहीं लगा, उठ ले ही लिया वो ले गया। कटियार की बात है, तुम बड़े होशियार होते हो। एक जगह बहुत गरीब ऐसे बाहर से आए हुए थे, तो मेरे कहने मिठाई दी थी, थोड़ी थी, वो हम लेकर गए, हमने पास में ली नहीं, ठेठ जाते है ही नहीं हमारे पास में, कब निकाल ली, कैसे ले ली पता ही नहीं लगा, पता नहीं लग रही थी। तो ऐसी चोरी विद्या है, चोरी की इतनी बात एक विलक्षणता है उनमें, तब ऐसी विद्या सीखे वो पुण्य कैसे करेगा, पाप कैसे दूर होगा। उत्तम विद्या में धन कमाता है, उस धन में प्राप्ति होती है, तो ऐसे ऐसे बात होते हैं। मन में धन की इच्छा होने से बड़ी दुर्बुद्धि होती है, बुद्धि खराब हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। हमने देखा जमीन बेच देते हैं, वस्तु बेच देते हैं, चीजों बेच देते हैं, गाय भैंस बेच देते हैं, रुपया 1,000 जमीन बेच देते हैं। मेरे से कोई सम्मति पूछे तो मैं जमीन बेचने की सम्मति नहीं देता, सोने चांदी से बढ़कर जमीन है, कोई राज हो कैसा ही हो जमीन का दाम रहेगा, सोना चांदी को उठाकर ले जाएगा, पर जमीन है तो वो अगर कब्जे में आप रख सको तो वो खरीद कर रखो, वो स्थायी पूंजी है, पर रुपयों के लिए जमीन बेच देते हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। थोड़ा सा ध्यान दे, एक बात बताओ आप, क्षमा कर देना, शंका हो तो पूछना, पहले संसार से सबसे रद्दी सिक्का है, इतना जब इतनी रद्दी कोई चीज नहीं है। सिक्का वो भी सोने चांदी का सिक्का, और कागज तो बिल्कुल रद्दी है। आज के जो नोट है इनके समान रद्दी चीज कोई है ही नहीं, सबसे रद्दी चीज है। टट्टी पेशाब काम आता है, पर रुपया खुद काम नहीं आता। सोना चांदी का हो चाहे नोट हो, रुपया खुद काम में नहीं आता। रुपया खर्च करने से काम आता है, रुपया देकर चीज लो तो वो चीज काम आएगी, रुपया खुद काम नहीं आएगा। आपको परीक्षा करनी हो तो सोना चांदी माणिक मोती पुखराज हीरा पन्ना लाल ये सब इकट्ठे करके सोना चांदी का चबूतरा बना दो और उसके ऊपर बैठा दो। मन अन्न मत दो, जल मत दो, कपड़ा मत दो, मकान मत दो, कितना दिन जीवेगा? इनका चबूतरा करके ऊपर बैठा दो, क्या बिना अन्न जी जाएगा? और अंदर जल देते रहो, कपड़ा देते रहो, मकान पर देते रहो, अन्न जल कपड़ा मारो, तीन चीज अन्न जल कपड़ा देते रहो। अरे पैसा भी आप मत दिखाओ, पहले कहो तो तांबे का पैसा है, आज कहता हूँ गिल्टी का पैसा भी मत दिखाओ। खूब मौसम जी जाएंगे, ध्यान देने की है। हर एक आदमी सुन नहीं सकता इस बात को कि सबसे रद्दी पैसा है, ये सुन नहीं सकता। पैसा इष्ट देव हुआ है, और पैसे के लिए झूठ कपट खास इष्ट देव है। कोई झूठ कपट नहीं करो महाराज, झूठ कपट मेरा काम नहीं चलेगा। जात शादी ठगी धोखेबाजी चोरी इनकम टैक्स चोरी सेल टैक्स की चोरी मत करो, काम नहीं चलेगा। इससे ही काम चलता है, ये तो काम नहीं चलेगा, भूखा मर जाएंगे हम, रोटी नहीं मिलेगी, मर जाएंगे। तो मैं कहता हूँ रोटी खाते हुए नहीं मरोगे? रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, क्या रोटी खाते खाते नहीं मरोगे? रोटी खाते खाते ही मरते हैं, सामग्री रहते हुए मरते हैं। रोटी रहती है, कपड़ा रहता है, मकान रहता है, रुपये रहते हैं, इनके रहते रहते मरता है आदमी। तो नया काम नया क्या नुकसान हुआ? आप पाप नहीं करे तो उससे पेट में रोटी भी नहीं पहुंचेगी। ऐसी हालत में बिना रोटी के हम मर जाएंगे, तो रोटी खा करके ही मर जाएंगे। तो पाप करके पाप की पोटली बहुत ज्यादा बनाकर पीछे मरे तो हल्के हल्के मर जाओ, बिना पाप के मर जाओ, क्या मरना तो पड़ेगा। पाप करो को तो मरना पड़ेगा, पाप नहीं करो तो मरना पड़ेगा, मृत्यु तो अवश्य होगी। इतना है कि पाप किए बिना हम शुद्ध मर जाएंगे, अशुद्ध होकर पापों को लेकर नरकों की तैयारी करके पीछे मरे। अब ये बुद्धिमानी है क्या बताओ? ये उन पक्ष में कहता हूँ कि पाप किए बिना आज निर्वाह नहीं होता, उन आदमियों के लिए कहता हूँ। और सिद्धांत यह है कि जब तक प्राण रहेंगे तो रहेंगे ही, चाहे आपके कौड़ी पास में ना हो, कुछ भी पास में ना हो, वो जीना है जितना जीना होगा। प्रारब्ध पहले रचा अरे पीछे रचा शरीर, तुलसा तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। इन माताओं से पूछो, बालक जन्मता है उनसे पहले दूध तैयार होता है। हम सत्संग में आते हैं उनसे पहले मकान बिछोना और पंखा ये बैठने की जगह पहले से होती है, पीछे हम आते हैं। ऐसा हो सत्संग आगे मकान बना हो गया, ऐसा होता है तो भगवान कितने गफलत है। बालक जब जन्मता है तो ये माताएं ठीक तरह से जानती है, दूध होता है ना पहला, वो दूध बच्चे को नहीं देते हैं, दूध पहले पैदा हो जाता है तो दूध वो गाढ़ा बन जाता है। अगर बच्चे को मार दे तो वो बहुत छोटा बच्चा होता है, जन्म लगे छोटा सा, वो पचा नहीं सकता, इस वास्ते उस दूध को निकाल देते हैं। ऐसे निकाल करके और खील की खील निकाल देने के बाद पीछे बच्चे को दूध पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो गया? दूध पहले हो गया, कई दिनों का हो गया, वो जम गया, वो बच्चा पचा नहीं सकेगा, मर जाएगा। गाय के भी बछड़ाता है तो गाय का भी दूध पहले ऐसे निकाल देते हैं, फिर बछड़े को पाते हैं। तो सिद्ध हुआ दूध पहले पैदा हुआ, बालक पीछे पैदा हुआ, तो भगवान का प्रबंध है। जन्म से पहले दूध तैयार किया, जन्माल धुराल दुधाल से जर काल में कौन गवाल करी, जन्माल धुराल जन्म से पहले दुधाल दूध से होता। तो भगवान का प्रबंध जीव जितने अन्न जल का है वो मिलेगा, कैसे मिलेगा इसको तो भगवान जाने, पर जिनके जीवन के निर्वाह के लिए चीज मिलेगी, इसलिए पाप करने की जरूरत नहीं है। संग्रह ज्यादा करना चाहते हो तब है। आजकल हमने सुना है कानून में भी ज्यादा पैसा हो तब, पहला ज्यादा लगता था टैक्स, आजकल 10,000-20,000 कितने मुझे याद नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, पर इतने रुपए टैक्स नहीं लगता है जी, 28,000 पहले 10,000 का सुना था, फिर 10,000 तक नहीं लगे अलग जगह, आज 28,000 तक टैक्स नहीं लगता। पर आप करोड़ रुपया चाहते हो तो भी बहुत पाप करना पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा ही। मैंने एक बात पूछी शेठ जी से, सिद्धार्थ जी गोविंदा थे ना, वो तो थे शेठ बने एक महात्मा थे, संत थे। मेरे शंका हुई, मैंने कहा कि कानून ही गलत बनाए हुए है, दरिद्र के तीसरा दो टैक्स दो इतना ये दो, फिर वो मकान का भी टैक्स, कोई मर जाए तो भी टैक्स, पास में रुपया तो टैक्स, रुपया तो टैक्स, पड़ी हुई संपत्ति टैक्स, तो क्या है भाई, ष्ठां रुपया रक्षित आया, खेत में अनाज हो जाए तो छठा हिस्सा लेते थे, पहले टैक्स लगता रहता। तो अब इतना टैक्स लगता है अन्याय पूर्वक, और वो नहीं दे तो पाप लगे, ने क्या न्याय है ये, श्री गोविंद का जी से मैंने पूछा था, ये हमारा सस्ता नहीं, कितना टैक्स लगा पाप लगेगा। तो शेर जी ने बड़ा उसमें उत्तर दिया कि टैक्स टैक्स न देने का पाप नहीं है, झूठ कपट का पाप है, झूठ बोलते हैं उसे, हमारे इतना है नहीं, झूठा लिखते हैं, झूठा करते हैं, उसका पाप लगता है। अपने पास इतना से हम टैक्स देंगे नहीं, लूट ले जाओ तो राज की मर्जी लूट लो, हम क्या करें, आपके पास शक्ति हमारे पास शक्ति नहीं, टैक्स हम नहीं देंगे। अगर ये सब व्यापारी तैयार हो जाए तो आज सरकार ढीली हो जाए, आज हो जाए, तो आप एक होते नहीं, पैसे और टैक्स लेना पड़ता है, उतना नहीं बैठ दो कि हम यहाँ हम तो दे दे हमारे बचाओ दे मरो। अभी बात चली थी वहां जोधपुर में, गणेश जी महाराज की सवारी निकली, तो उस सवारी में कहते इस रास्ते जाएंगे हम, कहीं से नहीं जाने देंगे, आपस में तनाता नहीं हो गई, तो सिपाही को मना करने लगे, उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को लेकर पहले ताव फेंक दी, कुछ बात चली, रोला पट गया, बाजार बंद हो गया, कैसा अन्याय क्यों करता है हमारे साथ में, हम भगवान गणेश जी की मूर्ति निकाले, उत्सव घरे मनाए हम, इस पर बातें हुई, बहुत रोड़ा हुआ। तो मैंने वहां कहा कि आपकी एकता नहीं है, जब एक होकर के महाराज जोधपुर का कारोबार सब एक दिन बिल्कुल ठप है, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करे, हड़ताल हो गई, सीधी हो गई, कलेक्टर ने खुद ने कह दिया कि ईश्वर से निकालो, पूछा कि आप लिख दो तो लिख कर दे दिया, हमारे गणेश जी उठाकर ले गए, क्या कारण था बताओ, हम अपने गणेश जी उत्सव मनावे, ये कोई राज्य है, अपने धर्म की बात भी हम नहीं कर सकते, उनको गोड़ा टेकना और नीचे होना ही पड़ा, पर सब एक हो गए, शहर मात्र में हड़ताल हो, ऐसा आप एक हो जाओ तो आपको सुख हो जाए। और मैं फिर जोर से कहा कांग्रेस को वोट कोई मत देना, जोर से कहा मैंने, क्योंकि वोट का जमाना आ रहा है, अब ऐसा कहे वोट वोट रखा है धनतेरस के दिन, तो देश हिंदू सब त्योहार में लगे रहे, वोट हो जाए तो ठीक हमारा हो जाएगा। जो जो त्योहार के दिन है, खास हिंदुओं का पर्व का दिन है, वो पर्व का दिन रखते हैं। तो मैंने जोर से कहा कि इनको टिकट देना मत, और बहना माताओं से कहा आप सब देना, आप एक धनतेरस दिन पूजन करते हैं भगवान से हमें धन मिले, तो अब कहना कि समष्टि भगवान की पूजन करेंगे, हम एक घर की दर्शनी नहीं करेंगे, अब पूजन करेंगे हम समष्टि भगवान, सबको मिले धन मिले। इस वास्ते धनतेरस के दिन छोटे बड़े जितने स्त्रियां पुरुष सबके सब हम वोट देंगे, और इन कांग्रेसियों को देना ही मत, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, हिंदुओं पर महान अत्याचार करते हैं। थे हिंदू होकर उनको वोट देते हो? कई एक बहन बोली कि हम तो वोट देते ही नहीं, बड़ा गजब करते हो आप। हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को जिनको अधिकार है, अवस्था में भी इतना अधिकार वोट दे सकता है, सबको वोट देना, और इनको मत देना, कभी मत देना इनको। जो गऊओं की रक्षा करे, जो हमारे मंदिरों की रक्षा करे, उनको वोट देना, और जो हमारे गायों की रक्षा, गायों की हत्या करते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, एक अयोध्या में मस्जिद बनाई जिस जगह राम जन्मभूमि है, राम जी का मंदिर था, राम जन्मभूमि, उस जगह मस्जिद बना दी, तो वो मस्जिद तोड़ दी। अब जोश है लोगों का, वो राज क्या करे, तो उसे पहले कहते कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, पहले जब मुलायम सिंह ने जैसे गोली चलाई थी उसी मकान में, तो वो राज था अपने भारतीय जनता पार्टी का, उसने कहा हम गोली नहीं चलाएंगे, और कह दिया मन तोड़ देने भी मस्जिद मत तोड़ो, मन जनता दीजिए जोश आगे तोड़ दिया, तो हम गोली चलाएंगे नहीं कह दिया पहले, और फिर मनोजन अस्तिवा दे देगा, मैं अपना अस्तिवा देता हूँ, मैं रक्षा कर नहीं सकता, अब जनता को गोली चलाऊंगी मेरे से होगा नहीं। वो मंदिर बनने नहीं देते, केवल मुसलमानों की गुलामी, इसके सिवा और कोई मतलब नहीं है, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और मुसलमानों के लिए मैंने कहा अपने महाराज साहब के सामने कहा कि महाराज मुसलमानों का कलंक है, मुसलमान जाति मात्र का, मथुरा में मंदिर तोड़ दिया, अयोध्या में मंदिर तोड़ दिया, विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया, इस जगह मस्जिद बना दी, ये मुसलमानों का कलंक है, एक जगह अगर टूट जाए तो कलंक मिटता है, नहीं तो जन्म वर्षों तक कलंक रहेगा, मुसलमानों के राज्य में इतना अत्याचार हुआ, ये कलंक मिटाते हैं हम तो, पर कलंक को बढ़िया मानते हैं, हमारा कलंक रहना चाहिए, मुसलमानों इतना काम किया हमने, कलंक रहना चाहिए, और उसका पक्ष लेती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को वोट नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना है, और प्रचार करो सब जगह ही कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, गायों की हत्या करे उसको नहीं देना है, वो हत्या रहो, मंदिर तोड़े उनको नहीं देना है, हमारे हिंदू धर्म का नाश करो उन्हें देना है, ये जो प्रजा संतति निरोध करते हैं, क्या नाम, परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन करते हैं तो उनको वोट नहीं देना, प्रयोजन नहीं करना है, मेरा कहना ये बहनों मानती नहीं, मैं प्रत्यक्ष कहता हूं अगर ये बहनों माताएं मानती नहीं है क्या करूं, आप थोड़ा हिसाब जाओ, हिसाब वाले से आपको हिसाब तो समझ में आता ही है, आप 1000 आदमी हो और ब्याह में हम दो और हमारे दो, ये हुआ चला, तो आप दो ब्याह करोगे तो आप दो और दो हुए, दो उनके बच्चे होंगे, जन्मने में तो आपने बंदी लगा दी, मरने में बंदी लगाई है आपने, हम दक्षिण में गए जिसमें महाराज एक छोरा, उसके माँ बोली कि महाराज आशीर्वाद दो, दो छोरे थे हमने ऑपरेशन करा लिया, एक छोरा पागल कुत्ता खा गए मर गया एक, अब ये नहीं मरे, तुम्हारे घर में खान है मनुष्यों की, उसको तो नाश कर दिया, तो 1000 अगर वो 1,00,000 होंगे, 1000 समझो 1000 हिंदू है और हम दो और हमारे दो, ब्याह होगा, अब दो बच्चे होंगे बड़े होंगे उनका ब्याह करेगा तब होगा, उतने दिनों तक कोई मरेगा नहीं, जब तक दो स्त्री पुरुष रहेंगे दो बालक होंगे तब तक ना तो माँ मरेगी ना बाप मरेगा ना छोरा मरेगा ना कोई संसार में आदमी मरेगा, ये होगा कभी, 10-10, 12-15 आदमी मरेंगे, तो मरेंगे वो खोटेंगे आपके, तो हजार हजार के हजार रहे और मरे वे खत्म होंगे भी नहीं। अगर दस दस मरेंगे तो हजार हजार आदमी मरेंगे, कितना दिन लगेगा बताओ? ऐसा बताओ भाई, रोजाना हरेक वर्ष में दस दस आदमी मरे, बारह पंद्रह मर जाते हैं, पर दस दस मरे और तो हजार आदमी कितना दिन चलेंगे बताओ? यानी एक सौ दिन में तो सौ वर्ष में सब मर जाएंगे। ऐसी स्कीम मैंने सुनी है, सरकार ने ये विचार किया कि सौ वर्ष में ये हिंदू सब खत्म हो जाएंगे, क्यों मौत तो बंद करी नहीं। अरे दो हमारे दो तो आप संख्या तो आपकी बरोबर ही रहेगी ना, आप हजार हो तो दो आप दो हजार ही रहेगी ना संख्या, मरेंगे वो मरते रहेंगे, मरते मरते आप सब खत्म हो जाएंगे। विदेशों में ये बात चली, उनके एक पुस्तक मुसलमान की लिखी हुई है बर्थ कंट्रोल, उसकी लिखी उसने, वह मैं बता दिया कि मर जाएंगे थे विदेशियों ने ये बंद कर दिया है, और जिसके ज्यादा लड़का हो जाए उसका टैक्स माफ कर दिया है, और उनके घर में कमरे कम है, तीन चार लड़के हो गए, छोटा घर है, तो सरकार की तरफ से कमरा बना दे रहा है सरकार, कितने से हमारा नष्ट हो जाएगा बंशी। इस तरह सरकार चेत गई है, और यहाँ पर ये हमारी बहनों माता ने चेत थी, वे कहती थी सफर कर दे, बस लड़का दो हो गया कर दे, एक हो जाए तो कर दो, ऐसे बंद कर दो। दशा क्या होगी, फौज में भर्ती कौन होंगे? फौज में हिंदू भर्ती होंगे, अब हिंदू तो दो रहेंगे तो फौज में भर्ती होंगे, घर का काम संभालेंगे, खेती कौन करेगा? कहते भूखा मर जाएंगे। हमारी बिना खेती के जंगल बहुत पड़ा है, आदमी ज्यादा हो तो ज्यादा अनाज होगा तो आप खाने वाला नहीं मिलेगा, इतना पैदा होगा अगर खाएगा कौन? मालूम होता है अन्न तो उतना ही है, पैदा होता ही नहीं, मनुष्य पैदा होते हैं तो अन्न क्या खाएंगे? अक्ल कहाँ गई है? फिर आशा या मैं तो आश्चर्य आता है, फौज में भर्ती कौन होंगे? अरे साधु कौन होगा, वृद्ध कौन होगा, अरे कौन सुनाएगा व्याख्यान, कौन मेहनत करेगा? वो तो दो सोलह घर में कौन जाएगा, कैसे जाएगा? फौज में जाएगा, साधु होगा, भजन ध्यान करेगा, तीर्थ वास करेगा, कौन करेगा? अरे फौज में जाएंगे साठ साठ लड़के लड़की एक एक मुसलमान के, बीस बीस लड़के मुसलमान हो गए, साठ लड़कों की बात सुनी, तीन ब्याह किया उसने और साठ लड़का लड़की है तो एक ब्याह और करूंगा, ऐसे उसकी बात सुनी है मुसलमान की, साठ वे लड़के मुसलमान और ईसाई जाएंगे फौज में, जहाँ कहीं लड़ाई हो वे जाएंगे रक्षा के लिए, तो क्या दशा होगी? बिना कसूर मनुष्य हिंदुओं को मारते हैं, उनके कुरान शरीफ में लिखा है कि जो मूर्ति पूजा करे उनको मार दो, हमारे धर्म स्वीकार करें उनको मार दो, ये खास उनका धर्म ग्रंथ कहता है। तो आपकी दशा क्या होगी? अरे वोट का जमाना है, ऐसे हिंदू कम हो रहे हैं और किसका राजी होगा? बहनों माताओं को समझाती है, समझ में नहीं आती। सरदार साहब में मैंने कहा तो कहा महाराज आप सत्संग की बात सुनाओ, ये कोई नहीं सुनता, आपकी बात कोई मानता ही नहीं है, अगर दोष मैंने कहा ये अभी जो राज करते हैं कांग्रेसी है, एक दिन ऐसा होगा मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर के आपकी एक एक टोपी देख करके खदर देख देख मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे आपको, आपकी दशा ये हो रही है। आप विचार करो, राज्य करते हैं, मेरे बिल्कुल आश्चर्य आता है कि जो राज्य करना चाहता है हिंदू और मुसलमानों का आपस में बैर पैदा कर दिया, तो संसार में जब प्रजा में बैर हो गया पैदा, वो राज्य कैसे होगा? वो ठीक है कैसे राज्य? मुसलमानों का हिंदुओं के साथ बड़ा बैर पैदा हो गया, बम्बई में तो कितना आतंका हुआ, कितना हिंदुओं को मारा, कितना मुसलमानों को मारा, मारने भी बात भी समझते, तो बैर पैदा करके प्रजा में और उस प्रजा पर राज्य करके आप कितना दिन जीवोगे? क्या था वो सुनते ही नहीं, माया नहीं सुनती, एक एक दुकान पर पांच पांच दस दस बीस बीस सौ सौ दुकान जाती गर्भ गिराने के लिए। मैं तो प्रार्थना कर देता हूँ कि जिस घर में गर्भपात हो जाए उस घर की भिक्षा में मत देना भाई, हमारे को पता लगता नहीं किस घर में क्या है, तो मैं हाथ जोड़ कहता हूँ जहाँ जाऊँ बीकानेर जोधपुर जहाँ सत्संग हुआ, मैंने कहा जिस घर में एक भी गर्भपात किया है तो उस घर का आनंद मत देना। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात रहे, जो ब्रह्म हत्या चार पातक महापातक बना हमारे, एक तो मदिरा पान एक दारू पीना, एक गर्भपात करना, एक ब्रह्म हत्या करना, एक सोना चांदी आदि के रत्नों की चोरी करना, ये महापातक है। चार महापातक करने वालों के साथ रह जाए 3 वर्ष तो उसको वही दंड होगा, वो महापातक न करने पड़ेगा, इतना महापातक का पाप बताया शास्त्र में। अब जब गर्भपात करे तो यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात रहे, ब्रह्म हत्या का पाप है दूना पाप है, महापाप से दूना पाप है। प्रायश्चित न तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है, पति को चाहिए उस स्त्री का त्याग कर दे जो गर्भपात करती है, पर पति आपसे मत गर्भपात कराने में, अब क्या करें बताओ, ऐसे महान हत्या कर रहे हैं तो क्या दशा होगी आपकी। जाता है मैं कहता हूँ मानते नहीं, लगता स्वामी जी को पता नहीं, ये स्वामी जानते नहीं बच्चों के पालन करने में कितनी तकलीफ होती है, उसको पढ़ाने में ब्याह कराने में कितनी तकलीफ होती है। तो हम लोगों की तकलीफ माँ बाप ने सही है, आपके भी बड़े हैं, आपके माता पिता है बूढ़े बड़े, उन्होंने ये तकलीफ सही है, तब आपका हमारा जन्म हुआ है, अगर नहीं सहित तो आप जन्म हम हो जाते सही रह जाते, अगर नसबंदी कर देते, अगर ऑपरेशन कर देते तो इतनी संख्या रहती है, इनमें से कितनी रहती, समझते नहीं है, ये कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, अब क्या करें बताओ। स्वामी जी तो इसमें समझते नहीं, रुपयों के महत्व समझते नहीं, ये दो बात बेसमझी मेरे साथ भी मिला है, स्वामी जी समझते नहीं। मैं कभी कभी जोश में कहता हूँ तुम्हारे से दूना समझता हूँ मैं, तुम तो रुपया रखना समझते हो, मैंने भेंट पूजा ली है रुपया रखा है, रखना भी जानता हूँ त्याग भी जानते हो, आप रखना जानते त्याग नहीं जानते, आप मेरे साथ जानते हो, मैं दूना जानता हूँ, कभी कह देता हूँ ज्यादा कह देता हूँ, जो कहने लायक नहीं है मेरी बात पर मन में आती है, मैं जानता कैसे नहीं हूँ, तुम्हारा अन्न खाता हूँ तुम्हारी बात नहीं जानता हूँ, घर की बातें बताता हूँ आपको, गृहस्थ में कैसे रहे थोड़े दिनों में लाखों की प्रति छप गई, बहुत ज्यादा पुस्तक छपी, गृहस्थ में कैसे रहे आप जानते, सभी समझते नहीं तो मेरी बात कैसे बिक रही है, सब चीजें सब पुस्तकों से अधिक बिक्री हुई है, आप दिन न कितने वर्षों में कितना तादाद में छपी है, ऐसा भी जानते नहीं, आराम रहेगा बस ठीक रहे आराम रहेगा, ये आराम नहीं सत्यानाश किया है, काम ये सत्य जो बताया ना, मनुष्य पाप क्यों करता है कि आराम से रहेंगे सुख भोगेंगे, इससे ही सब पाप होते, सब पापों की जड़ ये बताइए भगवान ने, वो आराम के पीछे आप पड़े हो, आपकी क्या दशा होगी। माँ बाप तकलीफ न भोगते तो हमारा जन्म होता, आप लोगों का होता, अब तो ऐसा हो गया है साहब, पर पहले तो भोगा है दुख, तब हम हुए इतने, कैसे माइयों का इस जीवन पैदा हो, कैसे पुरुष पैदा होंगे, कैसे मनुष्य स्त्रियों पैदा होगी, वंश पैदा कैसे होगा जब आप कंट्रोल कर लोगे सर्वथा, तो ये बिल्कुल गलती की बात है। तो बोट में ऐसा जोरों से प्रचार करना चाहिए, धनतेरस के दिन रखा हिंदू कोई वोट न दे सके ऐसा रखो जो अपन जीत हो जाए, ऐसी चालक करते हैं, ऐसा विश्वासघात करते हैं हमारे साथ में, तो अपने धनतेरस वही धनतेरस है, जो वोट दे वही धनतेरस है, वही अपने लक्ष्मी की पूजा है, वही आदर है, वही पूजा है। आप एक घर में धन के लिए करते थे, हम देश भर के धन के लिए करते हैं तो हमारी पूजा बड़ी होगी, इसका पूजा करो, सब भाई सब बहनों को वोट देना चाहिए अपना, कई बहनों माताएं वोट देती नहीं, भाई की वोट देते ही नहीं, इससे आपकी दुर्दशा हो रही है, आपके धर्म के ऊपर आघात हो रहा है। तो ये सब जगह प्रचार करो, गांव में जाकर प्रचार करो, शहरों में प्रचार करो कि ये दुष्टों को वोट नहीं देना है, जो धर्म का नाश करे मंदिर नहीं बनने दे, गायों का नाश करे, गायों खत्म कर दिए, लाखों गाय मारी जाती है, लाखों ही लाखों जगह जगह गाय मारी जाती है, हिंदुओं के सामने 200 के 400 कितनी गाय मारी गई। ऐसे गौरी हत्या हो रही है, वो ये पाप गो घात समाना। हरी हर निंदा सुने जो काना, तो वो ये पाप गौ घात समाना। गौ घात की इतनी बात है, इतना पाप लगता है, वो गौ घात हो रहा है जोर से, बड़े जोर से घात कर रहे, मानते नहीं है। एक एक गाय के टुकड़े कर बेचने से 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपया एक गाय का बटता है। उसके आंतों का अधिक, मांसों का अधिक, लकड़ी हड्डियों का अधिक, खुरों का अलग, उनके आंखों का, उनके जीव का अलग, कानों का ऐसा आचार घालते हैं, प्यार का टागड़ा कर करके, इतना ही तो उन्हें पाप होता है। उस लोभ में आकर मार रहे हैं, नरकों के दरवाजा काम क्रोध लोभ तीर रही है। अत्याचार कितना हुआ, व्यभिचार कितना हुआ, कितना अनाचार पैदा हुआ है गर्भ गिराने से, करने से आचरण भ्रष्ट हो गया, मनुष्यों का चरित्र भ्रष्ट हो गया, इतना अनर्थ हो रहा है। फिर भी आप सोचते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, जोर से प्रचार करो तो जो उनका राज्य न रहे। आपके हाथ में राज्य है, आज आप वोट दो उसको राज्य मिलेगा। मुसलमानों की भी गलत विश्वास नहीं करते हैं कि मुसलमान हमें वोट देंगे, वो सब वोट देते, स्त्री पुरुष सब, ये घड़ी दिखा रहे हैं, क्या करें, घड़ी आ गई है। इस वास्ते पाप आचरण क्यों करता है, ये पाप आचरण के ऊपर बात लगी, तो पाप आचरण भोगों के लिए, सुख के लिए, धन के लिए, आराम के लिए पाप करते हैं। ये जो गर्भगृह पाप क्यों करते हैं, आराम के लिए, सुख के लिए, भोगों के लिए। बच्चों को ले जाते हैं और खून बिखरता है, उस खून को भर ले जाते हैं, क्या दवाई करते हैं क्या पता नहीं है उनका, वे संग्रह करते हैं बच्चों का, तो आचार बनाते होंगे, कच्चे कच्चे बच्चों का आचार बना, आचार मांस में छोटे बालक की अंगुली निकली थी, ऐसी लोगों में प्रसिद्ध हुई, तो सोरों का मांस अब अन्न खाए उनका मांस बढ़िया ही होता होगा, घर में गिर जाए कच्चे कच्चे बच्चों का मांस, बस उसका आचार बनाते हैं। यह दशा हो रही है हिंदुस्तान जो कहलाता है, मांस इतना 20,000 टन विदेश से सूखे मांस की आई है, आज यह स्वीकार करी राज ने, 20,000 टन, 1 टन 27 मन का होता है, 20,000 टन सूखा मांस, ये बात मांगा है सरकार ने, स्वीकार भी सबने सुना है। तो मांस का जितना प्रचार, उसको उत्पादन करते हैं, पंचवर्षीय योजना में मांस का उत्पादन, मांस की तो हत्या करती, उत्पादन कैसे हुआ, मांस हत्या होती है तो नाश होता है, उसको उत्पादन नाम दिया है, अधर्मम धर्म मन्यते तमसा करता। चमड़ा जितना, सांपों का चमड़ा, हाथियों का चमड़ा, गायों का चमड़ा, खरगोश का चमड़ा, हिरण का चमड़ा, शाल का, लोमड़ी का चमड़ा, उधर उधर उस चमड़ा विदेश में जा रहा है, जितना हिंदुस्तान से गए चमड़ा किसी देश में नहीं हुआ, ऐसी बात हुई है, मैंने सुनी है, पक्की सुनी है, पक्की। तो ऐसा अत्याचार आप पर हो रहा है, अब ये क्या उपाय है, कब आ रहा है इलेक्शन, वोट मत प्रदान करना है, ये आप सब होशियार हो जाए, वोट दो सभी उनके विरुद्ध। अब भी जैसे 7-14 कितने आदमी कम थे, रुपया दे दे करके कांग्रेस राज टिका है, नहीं तो खत्म हो रही है, कांग्रेस बेचारी कंठ प्राण आ रहा है, मर रही है, थोड़ी आप चेष्टा करो तो राम नाम सत बोल जाए, हमें राज से मतलब नहीं है, हमें राज से मतलब नहीं, पदार्थों से मतलब नहीं, हमारा मतलब दूसरी बात का है। हिंदू समाज में जितनी सुगमता से मुक्ति लिखी है, ईसाइयों में, यहूदियों में, पारसियों में इतनी नहीं है, तो आप जन्म नहीं दोगे तो कितना अनर्थ हो जाएगा। कौरव पांडवों की 9 अक्षौणी सेना थी, तो एक तो कृष्ण भगवान के शल्य की 2 अक्षौणी सेना दुर्योधन ने ले ली, तो दुर्योधन 11 हो गई, अपने साथ रह गई। ऐसे आप नहीं जन्मे रहोगे, जन्मे गए मनुष्य जन्म में, तो कहा तो ईसाइयों के जन्मे गए, मुसलमानों के जन्मे गए, तो आपने 2 घाटा उठे, 4 बढ़ जाएगी, 2 अक्षौणी कम होने से 11 अक्षौणी होगी, ऐसी 7 अक्षौणी होगी, ऐसे आपके बच्चे जन्मेंगे वहां पर, फिर वे करेंगे हिंदुओं का हिंदू धर्म का नाश, तो धर्म का नाश करने का पाप अलग लगेगा, गर्भपात का पाप अलग है, नशबंदी का पाप अलग है, महान पाप लगेगा। इस वास्ते आपसे कहते हैं काफी सावचेत हो जाओ, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नारायण 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 नारायण।